राधे गोविंदा गोपाल राधे गोविंदा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 राम
राधे गोविंद राधे गोविंद गोपाल राधे गोविंद
राधे गोविंद
गोपाल राधे गोविंद गोपाल राधे हरे राम 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 हरे हरे
हरे
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय श्याम सुंदर राधे, जय जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय जय राधा श्याम सुंदर राधे। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री राधा मान बिहारी लाल की, श्रीमान इंगित वन की, श्रीमान मंदिर की, श्रीमान गढ़ की, श्री बरसानो धाम की, जय जय श्री राधे श्याम। तो मानगढ़ के आप सबका, मानगढ़ पर आप सबका स्वागत है 10 फरवरी को। किसी को दुख नहीं हो रहा है क्या जाने के लिए? श्री राधे, इतने दिन प्रेम से रहे राधा रानी के धाम में। एक उसमें मार्ग है आपके दुख के लिए, वो ये है कि राधा रानी को और राधा रानी के धाम को हृदय में बसाकर मुंबई ले जाओ, फिर आपका काम बनेगा। अभी से आपकी सही यात्रा शुरू होती है, अब तक तो शारीरिक यात्रा थी, अभी मानसिक यात्रा शुरू हो जाएगी, है ना। अब तक शरीर से आप, शरीर से मन से सन से सबसे आप वृंदावन धाम में बरसाने में थे, अब से शरीर आपका मुंबई जाएगा, कहां कहां चला जाएगा, लेकिन मन आपका राधा रानी के पास ही होना चाहिए, हृदय आपका राधा रानी के पास होना चाहिए। बताया आपको मैंने, बार बार वही बताऊंगा, मैं रिपीट करूंगा वही बात, उनको हृदय में बसाकर ले जाना है तो आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, उसके माध्यम से राधा रानी आपके संग चली आएगी। कई प्रकार के ब्रजवासी होते हैं, एक ब्रजवासी होते हैं जो यहां जन्म लेते हैं, भाग्य उनका, राधा रानी उनको यहां पर जन्म देती हैं, लेकिन जन्म देने के बाद में अगर उनका भजन नहीं किया तो क्या लाभ उस जन्म का। हाँ, यहां पर रह के ऐसे ही टाइम पास किया, कुछ लोग गुंडागर्दी भी करते हैं, कुछ लोग लूटमार भी करते हैं, डकैत बन जाते हैं, क्या लाभ है जन्म लेकर, भी लाभ क्या है, बहुत बड़ी लाभ प्राप्ति हुई है लेकिन उसको वेस्ट कर दिया, या तो जन्म ले लिया और जीवन भर राधा रानी के भजन में रही, वो सर्वश्रेष्ठ ब्रजवासी का जीवन है। दूसरे ब्रजवासी होते हैं वो बाहर जन्म लेते हैं कहीं, लेकिन यहीं बढ़कर बस जाते हैं, यहां पर अपना परमानेंट निवास बना देते हैं, जगह लेते हैं, घर बनाते हैं, यहीं रह जाते हैं। तीसरे टाइप के ब्रजवासी होते हैं जो हमारा जैसे कुछ दिन के लिए आते हैं, कुछ दिन रहते हैं, ब्रजवास करते हैं, है ना। कुछ दिन के लिए आप ब्रजवासी हो ना, ब्रज का वास कर रहे हो, कुछ दिन ब्रजवासी हो, लेकिन तीनों के लिए आपको शरीर से यहां रहना पड़ेगा। लेकिन चौथा टाइप ऐसा है कि आप दुनिया में कहीं भी रहो लेकिन हृदय से ब्रज में रहो, वो भी ब्रजवासी है। मुंबई में रहो, कलकत्ते रहो, अमेरिका रहो, लंदन रहो, कहीं भी रहो, मन आपका राधा रानी के चरणों में रहेगा, उनकी याद में रहेगा, स्मृति में रहेगा, हमेशा बरसाने की याद आपके मन में बनी रहेगी, कैसे हम लोग यहां रहे थे, दर्शन किया था, सेवा की थी, भजन किया था, प्रवचन सुना था, ब्रजवासियों का आशीर्वाद लिया था। इसलिए यहां के हर चीज जो है ना वो दिल से करनी चाहिए, तो दिल से करते हैं उसको दिल से याद आती है उसकी बाद में, मतलब टाइम पास में किया तो उसकी याद नहीं आती, जो दिल से हृदय से किया जाता है वो याद रखते हैं हम लोग। और एक तरीका है दूर जाकर ब्रजवासी बन के रहने का, कि तू कहीं भी जाओ ब्रज के बारे में चर्चा करते रहो। क्या करते हैं ब्रजवासी यहां पर, नंद बाबा, यशोदा माई, टोपी निकाल के दो, क्या करते हैं वो, दिन भर कृष्ण के बारे में चर्चा करते रहते, अरे कृष्ण ने ऐसा किया, अरे कृष्ण ने वैसा किया, अरे आज इसमें घर में माखन चुराया, अरे उसमें कंप्लेंट किया, अरे उसने ऐसे किया, सखी आके कंप्लेंट कर रही थी, अरे फिर ऐसे हुआ, फिर केशव को मारा, अरे फिर वो हरिशास्त्र को मारा, अरे फिर ऐसे किया, फिर वैसे किया, अरे आज मानसी गंगा बना दिया उन्होंने, राधा कुंड बना दिया, है? कल जो लीला होती है वो आज का गीत बन जाता है। बहुत सुंदर लाइफ है यहां पर, जो जो यहां पर होता है वो अगले दिन गीत बन जाता है। और फिर दही मंथन करते वक्त कुछ भी सेवा करते हैं, गाय का दूध निकाल रहे हैं, गाय को धो रहे हैं, वही गीत गा रहे हैं जो कल लीला हुई थी, यही यहां का जीवन है और कुछ नहीं है। दिन रात कृष्ण के स्मरण में, दिन रात कृष्ण के भजन में, कृष्ण की सेवा में, कृष्ण के विचार में एकाग्र होकर मग्न होकर रहना है,
तो उसके लिए जरूरी नहीं कि आप ब्रज में ही रहो तो ऐसा हो सकता है, आप कहीं भी रहे के ऐसा हो सकता है ना। बॉम्बे में जाएंगे तो बॉम्बे का विचार करेंगे, फिल्म स्टार का विचार करेंगे, बॉम्बे के रस्तों का विचार करेंगे, रसगुल्ले का विचार करेंगे, हो सकता है। लेकिन प्रयास करना पड़ेगा आपको, वहां रहकर यहां की याद करेंगे, अगर कुछ बात दिल को छू गई है तो आपको याद आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। हृदय को बात छूना चाहिए, ब्रज धाम, राधा रानी का नाम, ब्रज की सेवा जो है वो हृदय को छूना चाहिए। जब स्पर्श यहां पर होता है ना तो फिर याद आती है उसकी। जब हम हमेशा उदाहरण देते हैं ना, समझो कोई कॉलेज का लड़का है, कॉलेज की लड़की है, उनका प्रेम हो जाता है तो हमेशा वो खोए खोए से रहते हैं, देखा है ना आपने, कहां पर रहेंगे तो खोए खोए रहते हैं। क्यों खोए रहते हैं? उसके विचार में मग्न रहते हैं। तो पढ़ाई कर रहे हो, किताब लेके बैठे हो, कॉलेज में जा रहे हो, घर पे जा रहे हो, तो क्या हुआ नहीं करी, अरे हाँ याद नहीं आता क्या कर रहे थे, इतना खोए रहते हैं हम लोग। तो ये दुनिया का उदाहरण है, लेकिन फिर भी हम लोग किसी चीज में खो जाना मतलब इसकी समझ सकते हैं हम लोग। तो ऐसे ही राधा रानी और कृष्ण भगवान के प्रेम में हमको खोए खोए रहना चाहिए, जब भी फ्री टाइम हो उनकी याद कर लेनी चाहिए, तुरंत उनका नाम जपना चाहिए। इस पर हम प्रेम करते हैं, बार बार उसका नाम लेते हैं, खाते पीते बैठते उठते, जिस पर सबसे अधिक प्रेम है उसके बारे में बात करते रहते हैं ना। और एग्जाम्पल कैसा है, तुम जो किसी जैसे हमारी ये अपन बैठी हुई है, क्या नाम आपका?
कृष्ण प्रीति।
इनके लड़के का नाम क्या है?
कृष्णांगी।
कृष्णांगी, जब इसका जन्म हुआ था तो दिन भर आप क्या करते थे? इसकी बातें करते थे, अरे अभी वो टट्टी के, अभी पेशाब के, अभी ड्रेस के, अभी सो रही है, अभी उठ रही है, अभी स्नान करना है, अभी खिलाना है, अभी रो रही है, अभी ये कर रही है, वो कर रही है। किसी को फोन करेंगे तो वो बताएंगे, अरे मैं उसको कपड़े बदले कर रही हूँ, वो ऐसे किया, वो रो रही थी, ऐसे वो है ना। कितने महीने तक अभी भी वही चलता रहेगा शायद, हमारे घर में भी बेटी, हम लोग भी दिन भर उसकी बातें करते हैं। जिस पर लगाव है हृदय का, जिस पर प्रेम है, उसके बारे में आप भी बात करते रहते हैं हमेशा। और हमने ये भी देखा है कि हमारे कोई छोटी छोटी लड़कियां हैं, बड़ी हो गई, उनका विवाह हो गया, तो विवाह होने के बाद में अपनी सहेलियों के साथ दिन भर अपने हस्बैंड के बारे में बात करते रहते हैं, अरे माय हस्बैंड, कॉन्स्टेंट। कभी कभी बोर हो जाता है, लेकिन उनके लिए वही विषय है, नई नई शादी हुई है, पति ने क्या बोला, फिर मैंने क्या बनाया, फिर उन्हें क्या जवाब दिया, फिर क्या रिस्पांस दिया, फिर कहाँ घूमने गए, फिर ये किया, फिर वो किया, माय हस्बैंड। तो वैसे ही माय राधा है, माय कृष्णा, ऐसे बात होनी चाहिए हमेशा। दिल लगाओ, हाँ दिल लगाओगे तो याद आएगी, दिल नहीं लगाओगे तो कुछ याद नहीं आएगी। अंतिम समय में भी याद रखना, जिस पर दिल लगाया है वही याद आएगा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। जीवन के लास्ट मोमेंट पे आपको केवल वही याद आएगा जिसको आपने जीवन भर दिल लगाया है, वही बात याद आएगी, बाकी सब भूल जाएंगे आप। तो वहां पर आपको केवल एक चीज को याद करना है, 10 चीज को याद करने का परमिशन नहीं वहां पर। उस क्षण में आपको सबसे अधिक प्रेम आपने किससे किया है उसका याद आएगा, इसलिए अभी प्रेम करना सीखो। इसलिए नाम लो और नाम पर प्रेम करो और नाम प्रभु पर भी प्रेम करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम चाहते हैं कि यहाँ पर आने वाले हर एक जीव अंतिम समय में राधा और कृष्ण को याद करने में सफल हो जाए। करेंगे ना आप लोग कोशिश? हाँ, तब आपका यहाँ पर आना जो है सफल हो जाएगा। तो बार बार आओ, 50 बार आओ, क्या फायदा है उसका? जब दिल नहीं लगाओगे तब तक ये यात्रा बेकार है। हमारी कोशिश ये है कि आपका दिल लग जाए। पर राजा रानी बड़ी दयालु हैं, बड़ी भोली हैं, बड़ी कृपालु हैं, आपके दोषों को देखती नहीं है, आपके गलतियों को नहीं देखती है, जो सेवा किया उसको देखती है। हमारे गुरु भी ऐसे ही हैं, हमारे हृदय में झांक कर देखते तो बहुत गंदगी दिखती है उनको उधर, लेकिन वो गंदगी को देखते नहीं, बहुत सारी गंदगी हृदय में, उसको नहीं देखते। वो एक चिंगारी है कोने में भगवान के भजन की, उसको हवा देते रहते हैं, वो चिंगारी का फिर वो ज्योति में रूपांतर करते हैं, अग्नि में रूपांतर करते हैं, फिर वो सारी गंदगी को जलाकर भस्म कर देते हैं। ये संतों की दृष्टि है, क्योंकि यही राधा रानी की दृष्टि है। वो केवल देखेगी आपके अंदर क्या है, आपके अंदर उनकी सेवा करने की थोड़ी बहुत इच्छा है, उसी को देखेगी वो। जैसे होता ना वो भंवरा, वो फूल का रंग कौन सा है वो देखता नहीं, वो पीला है कि हरा है कि गुलाबी है, वो केवल मधु को जाके देखता है, मधु लेता है और चला जाता है। कृष्ण भगवान राधा रानी कैसे भावग्राही है, आपका कैसा भाव है उनके प्रति, वो स्वीकार करते हैं। यही धाम का रहस्य है। यहां पर जाकर हम लता पताओं से इनको गले लगाओ, आप सब लोग, सब वृक्ष जो है महान संत लोग हैं, स्वयं राधा रानी है, भगवान के कल्प वृक्ष हैं, इनको सब जाते जाने के पहले गले लगाओ, हृदय की प्रार्थना करो, हमें राधा रानी की याद दिला दो, उनसे स्मरण कराओ, उनकी सेवा दो, मुंबई में जाने के पश्चात भी हमको हृदय से ब्रज में रखो, तब जीवन में आनंद आएगा। सबसे अधिक पावरफुल ब्रजवास जो है ना, वो दूर रहकर उसकी याद करने का है, क्योंकि यहां पर आएंगे तो हम लोग कभी भूल जाते हैं, हाँ देखेंगे इधर उधर करेंगे, दूर जाएंगे तो याद आएगा इनको, अरे कितने अच्छे थे वहां पर। तो ये सब जो कैटेगरी है ब्रज की, इसमें एक होता है ब्रज उपासी, ब्रज की उपासना करता है, ब्रज को पूजता है, ब्रज को भजता है, उसकी सेवा करता है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रज उपासी और ब्रजवासी। और एक होता है ब्रजहासी, जो ब्रज का नाश कर देता है, कभी लोग कुंड को नष्ट कर देते हैं, पहाड़ तोड़ते हैं, पत्थर बेचते हैं उसका, कुंड का जमीन को बेच के बिल्डिंग बनाते हैं, ये ब्रजनाशी है, बहुत बड़े पापी लोग हैं, क्योंकि ब्रज भूमि जो है वो साक्षात कृष्ण का अंग है, ये राधा रानी का स्वरूप है, ये बलराम जी का स्वरूप है, ये दिव्य वस्तु है, इसको रिपेयरिंग नहीं कर सकते हम लोग, पहाड़ तोड़ेंगे तो पहाड़ दोबारा बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते, कुंडों को बना सकते हैं लेकिन पहाड़ तोड़ेंगे तो नहीं बना सकते। हम लोग ये भी प्रार्थना करेंगे कि ब्रज बना रहे अच्छी तरह से, ताकि हम अपने बड़े होकर बालकों को लेकर आएंगे, पोतों को लेकर आएंगे, फैमिली को लेकर आएंगे, तो दृश्य देखने को मिलेगा कि अरे यहाँ पर ये कुंड है बहुत बढ़िया है। नहीं तो हम लोग अभी कैसे बोलते हैं, जब मैं यहाँ पर 92 में था तो जमुना में एक जगह स्नान किया करता था, आज जमुना जी वहां से दूर चली गई है, सब वहां जमीन हो गई है, खेती हो रही है, सब कुछ हो रहा है, बहुत दूर जमुना जी चली गई है, उसका पात्र पूरा बदली हो गया है। तो मैं क्या कहूंगा, अरे यहां पर जमुना हुआ करती थी और यहां पर मैं स्नान किया करता था, ऐसे बोलूंगा ना मैं, क्योंकि अभी नहीं है वहां पर वो। इसलिए अभी आपको जो दिखाई पड़ रहा है आपके हृदय के पटल में उसको बंद कर दो, तो भूलना मत उसको, जो दृश्य आप आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, जो स्किन से अनुभव कर रहे हैं, ठंडी का गर्मी का, यहाँ का जल पी रहे हैं, यहाँ प्रसाद ले रहे हैं, सबको दिल से करो, याद करो उन चीजों को, ग्रहण करो इन इंद्रियों के माध्यम से, तो फिर हृदय में कृष्ण बसेंगे, राधा रानी बसेगी, फिर जगह जगह उनकी याद आएगी। हा? कभी भी मुंह से मुंबई में रहो या यहां पर रहो, बेफजूल की बातों कभी करो ही मत, यूजलेस टॉक्स वन शुड नेवर डू, क्योंकि उससे कुछ लाभ नहीं है। हमेशा या तो काम की बात करो जिस काम को कर रहे हो, या तो भगवान की बात करो, क्योंकि जुबान जो है वो भगवान की बातें करने के लिए दी गई है, आंख जो है वो बनाई गई है भगवान को देखने के लिए, कान जो है दिए ही उसके लिए है कि भगवान के बारे में सुने, और कोई इसका हेतु नहीं है, दुनियादारी का सुनना देखना बोलना काम करने के लिए शरीर नहीं दिया है हमको, ये शरीर भगवान की सेवा के लिए दिया है। इसलिए अपने नेत्रों का, अपने आंखों का, अपने जबान का, अपने कानों का, उनकी सेवा के लिए इस्तेमाल करो, तब ये परिपूर्ण हो जाएंगे, तब हम इंद्रियों से ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी जो ऋषिकेश है उनको हम वश में कर सकते हैं। हरे कृष्ण। ये मान मंदिर है, यहां पर राधा रानी क्रोध करती है, क्रोध नहीं करती है, मान करती है, क्रोध तो हमारा होता है, जब हमारी कोई इच्छा नहीं पूरी होती है तो हमको क्रोध आता है, राधा रानी को जब वो वैसे भावना होती है तो वो उसको मान कहते हैं, मान का मतलब जो भगवान के प्रेम को बढ़ाता है, यहां पर कई कारण से राधा रानी मान करती है, कभी वो रास में लेट आते हैं तो मान कर देती है, कभी वो कहते हैं कि कृष्ण भगवान कहते हैं उनको कि आप तो चंद्रमुखी हो, उनको आपके पति आपको कहेंगे कि कृष्ण प्रीति आप तो चंद्रमुखी हो, वे इतने खुश हो जाएंगे कृष्ण प्रीति, बोले क्या बनाऊं आपके लिए बताऊं, किसी भी पति पत्नी, पत्नी को पति ने कहा कि आप तो चंद्रमुखी हो, हमारी एक आर्किटेक्ट है उसका नाम भी चंद्रमुखी है, तो आपको चंद्रमुखी कहेंगे तो कितना अच्छा लगेगा, ये राधा रानी को भगवान ने कहा आप चंद्रमुखी हो तो बड़ा मान हो गया उसको, गुस्सा हो गया, तो क्यों, बोले तो चंद्र के अंदर दाग है, हमारे सौंदर्य में कोई दाग नहीं है, तो दाग वाले वस्तु से कैसे तुलना कर सकते हैं हमारे यहां, क्या बोलते हैं चंद्र जो है ना उसको ग्रहण लगता है, हमारे सौंदर्य में कोई ग्रहण लगता नहीं है, चंद्र जो है ना वो कम 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 होते जाता है, इसका साइज जो है ना उसमें कहते हैं उसको ह्रास होता है उसका, ये डिकेज इन साइज, हमारा सौंदर्य जो है कम नहीं होता है, बढ़ते जाता है, और चंद्र जो है ना उसके बहुत तारे जो है उसके पीछे पीछे रहते हैं। चंद्र को जो है अनचेस्ट कहा गया है, चंद्रमा को, जो बहुत तारे उसके पीछे रहते हैं। लेकिन हम बहुत पतिव्रता हैं, हाँ, आपके प्रति हमारा तो श्रद्धा है, केवल आप हमारे मन में हैं और कोई हमारे मन में नहीं। तो ऐसे चंद्रमा से कैसे तुलना कर सकते हैं आप हमारी? और सबसे बात ये भी सब मान लूंगी मैं, लेकिन जो मेरी राइवल है, प्रतिस्पर्धी, हाँ, चंद्रावली, उसके नाम में वो चंद्र है, तो उसके आप मेरी तुलना कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन यू कंपेयर मी विथ सो मेनी थिंग्स विच आर नॉट फिटिंग माई ग्लोरी? जो मेरी हकीकत है, वास्तव है मेरा, उस वो जिसके साथ मिलता नहीं है उससे मेरी तुलना क्यों करते हो? नाराज हो गई, बाहर पर बैठ गई। और भी कई कारण है उसके। राधा रानी जो है ना वो कृष्ण भगवान को नृत्य सिखाती है, वो गुरु है कृष्ण की। मुरली भी बजाने को उन्होंने सिखाया है, जमुना किनारे नृत्य करने को भी उन्होंने सिखाया है। जो भी कृष्ण भगवान करते हैं सब कुछ उनसे सीखे हुए। तो वो जब नृत्य सिखाने को बैठती है राधा रानी, तो उनको वो ताल दिखाती है, ऐसे कदम डाल के दिखाती है, बोला भी करो। तो ये बहुत होशियार है, वैसे एक सेकंड में सीख सकते हैं, लेकिन जान बुझ के गलत स्टेप डालते हैं। क्यों? क्योंकि क्लास अगर लंबा चलेगा तो लंबा संग मिलेगा ना, तो क्लास लंबा करना चाहते हैं। हम लोग कैसे करते हैं अपने क्लास में, अरे मैडम महेश्वरी सिखा रही है, जल्दी खत्म हो जाए तो अच्छा, अरे एक घंटा हो गया अभी, 11:30 कब बजेगी? लेकिन कृष्ण भगवान ऐसे विद्यार्थी नहीं है, वो सोचते हैं कि अपना क्लास बहुत लंबा होना चाहिए, इसलिए जितने कदम डालने को सिखाते हैं, हाँ, जितने पद डालने को सिखाते हैं उतना वो गलत पद डालते हैं उसके अंदर। वो राधा रानी बेचारी भोली है, बोलते अरे कन्हैया ऐसे नहीं, ऐसे डालो। वो जल्दी, उनको क्रोध नहीं आता है, वो बड़े प्रेम से सिखाती है। लेकिन कुछ देर बाद उनको ध्यान में आता है कि ये जो कन्हैया है ना बहुत लुच्चा है, ये जान बूझ के गलत स्टेप डाल रहा है, तो फिर गुस्सा हो जाती है, तुरंत चले जाती है। फिर कृष्ण भगवान नाराज होता है, अरे अरे माफ करना है, नहीं नवीन कुछ नहीं, जाओ बात नहीं करेंगे आपसे, जाओ। फिर मान करके यहां बैठ जाती है। फिर कृष्ण भगवान पीछे पीछे आते हैं, फिर और चढ़ती है, फिर पीछे पीछे आते हैं, फिर और कृष्ण चढ़ते हैं, फिर वो और चढ़ती है, जितना माफी मांगते उतना ऊपर ऊपर चढ़ के जाती है, फिर छोटे पे चले जाते हैं। सब ललिता विशाखा सब नाराज है, अरे कृष्ण भगवान पर राधा रानी रूठ गई है। आपने फोटो में देखा ना, एकदम रूठ के बैठी हुई है, नाराज हो गई एकदम। तो ललिता क्या कर रही है, कृष्ण भगवान का बाया हाथ एक हाथ में पकड़ा है, राधा रानी का बाया हाथ पकड़ा है, और उसको मिलाने की कोशिश कर रही है, नहीं नहीं मिलेगी, उधर देखती है। राधा रानी को दिखाने के लिए कृष्ण भगवान को इधर से इधर लेके आते हैं, और उनका लेफ्ट हैंड और उनका राइट हैंड मिलाने की कोशिश करते हैं, फिर वो इधर देखती है, धुतकार देती है। ऐसे चलता है बहुत देर तक। फिर कृष्ण भगवान ललिता को कहते हैं, जाओ जरा मनाओ। ललिता दी ऊपर जाती है, नीचे आती है, थक गई अभी ऊपर नीचे जाकर, इतना बार बना रही, वो नहीं मान रही है, क्या करे अभी? कृष्ण कह रहे वो रूठ गई तो मेरी जिंदगी बेकार है, मैं जीना मेरा बेकार है। अचानक ललिता देव को कुछ आइडिया आते मन में, कान में कुछ बोलती है कृष्ण के, कृष्ण चले जाते हैं, राधा रानी रूठी बैठी हुई है। फिर अचानक एक मोर आता है एक पर्वत की चोटी पर, बहुत सुंदर नृत्य करने लगता है, बहुत सुंदर। राधा रानी रूठी हुई है, ललिता कहती है, देखो देखो मोर आया है, कितना सुंदर नाच रहा है। देखते नहीं हो, मोर नाचते रहता है बहुत सुंदर सुंदर, देखो 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 करके बनाती है उसको, वो देखते हैं उसको, अरे जब देखती है तो एकदम मोहित हो जाती है, अरे कितना सुंदर नृत्य कर रहा है मोर। कुछ देर बाद देखते रहते तो सारा गुस्सा खत्म हो जाता है, और एकदम भाव में आकर देखते नृत्य तो मोर और आनंद से नृत्य करने लगता है। फिर उसके बाद में ये खुद उठती है और मोरनी बन जाती है और नृत्य करती है उनके साथ में। फिर मोर मोरनी बहुत देर तक नृत्य करते हैं, बहुत सारे मोर आ जाते हैं, वो सब साथ में नृत्य करते हैं। तो गोपियां वाद्य बजाती हैं, संगीत देती हैं, कोई कंगन बजाती है, कोई पायल बजाती है, कोई कमर की घंटी बजाती है, सब लोग ऐसे सुंदर सुंदर वाद्य बजाते हैं घर घर के और नृत्य करते हैं। और बहुत देर बाद मोर और मोरनी गले मिल जाते हैं। जब मोरनी मोर को गले मिलती है तो समझती है कि मोर कृष्ण है, पहचान लेती है, अरे ये तो मोर बन के आए थे। तो ये मोर कुटी की लीला है, राधा रानी को मनाने के लिए कृष्ण भगवान मोर बने हुए हैं। और एक ही टाइप का मोर बने नहीं है, कभी दोनों आए, वो सुंदर हवा चल रही है, दोनों खड़े हैं, तो तो कृष्ण भगवान मुरली बजाते हैं, मुरली के धुन सुनकर सब मोर भाग भाग के आते हैं, बादल भी आते हैं, हल्की हल्की वर्षा भी करने लगते हैं और सब मोर नाचते हैं। तो राधा रानी वीणा बजाती है, कृष्ण मुरली बजाते हैं और सब मोर नृत्य करते हैं और दोनों आनंद लेते हैं। फिर राधा रानी कहती है तुम मोर बन के आओ, कृष्ण मोर बन के आके नृत्य करके उनको रिझाते हैं। जब कृष्ण कहते राधा रानी तुम मोरनी बन के आओ, कृष्ण मुरली बजाते राधा रानी नाच करती है मोरनी बन के। ऐसे अलग अलग प्रकार की लीलाएं यहां पर है, कभी मोर जैसे नाच करते हैं, कभी मोर बनकर नाच करते हैं। तो सब मोरों की यहां पर लीला है, बहुत सुंदर है। तो यहां मोरकुटी में वो एक चित्रपट ऐसा है, उसकी कथा ऐसी है कि मोरकुटी में बड़े संत हुए, बहुत बड़े संत थे वो, सिद्ध बाबा थे। एक सिंह था, सिंह लायन उनका शिष्य था, सोच सकते हैं क्या? तो उनका शिष्य था, वो गले में थैली लटकाकर अपने गुरु के लिए वो भिक्षा मांगता था मानपुर में जाकर। दरवाजा बंद है, उसने खटखटाया आपके घर पे, तो क्या सोचेंगे आप, अरे दूध वाला आया होगा या धोबी आया होगा या कोई बिल देने को आया होगा। तो गेट खोलेंगे आप और आपके सामने शेर खड़ा होगा, तो क्या सोचेंगे आप? दरवाजा बंद करके भाग जाएंगे। तो ये शेर रोज आके सबके दरवाजे खटखटाता था और सब लोग उसको जानते थे कि बाबा का शिष्य है। उसमें वो थैली में गले में रोटी डालते थे, फिर गांव वर भिक्षा करके अपने बाबा के पास जाता था, तो बाबा उसकी थैली उतार के रोटी खाते थे और बची हुई रोटी ये शेर खाता था, कुछ नॉन वेज नहीं खाता था, केवल बाबा का बचा हुआ प्रसाद खाता था। ऐसे महात्मा थे। तो उनके स्वप्न में राधा रानी आई। अच्छा बाय द वे बताना भूल गए, बाबा अंधे थे, ही वॉज अ ब्लाइंड बाबा। उसके स्वप्न में राधा रानी आई और राधा रानी ने उसको स्वप्न में मोर लीला दिखाई कि राधा और कृष्ण मोर बनकर नाच रहे हैं, बहुत सुंदर। हाँ, ऐसे बन के राधा रानी खड़ी है और ऐसे बन के कृष्ण खड़े हैं, दोनों से ऐसा एक गोल बना हुआ है पंख का, बहुत सुंदर। राधा रानी कहती है अभी आपको इसका चित्रपट बनाना है, यू हैव टू पेंट दिस लीला। तो कहते मैं तो अंधा हूं। बोले कोई बात नहीं, मैं आपको सिखाऊंगी कैसे बनाना है। राधा रानी उसको शक्ति ऐसी देती है कि अंधा होने पर भी आंख जिसकी है नहीं फिर भी वो चित्रपट बना देता है अपने हाथ से, मन के चक्षु से। हाँ, राधा रानी के दया से अंधा होने पर भी वो एक सुंदर चित्रपट बना देता है, उसमें राधा और कृष्ण मोर बने हुए। वो चित्रपट आज भी मोरकुटी में मौजूद है। हाँ, जब मैं चला जाऊंगा आपको छोड़ के, तो आप लोग जब रस मंदिर में आएंगे वो प्रसादी लेने के लिए, उसके बाद में आप सीढ़ी चढ़कर मोरकुटी में चढ़कर वो दर्शन करके आना, ठीक है ना? तो ये मोरकुटी की लीला है। और हमारे मुरारी वल्लभ जी ने हमको एक और याद दिलाया था कि कथा बताओ। हाँ, वजन वजन कौन सा वजन बताया ना उधर, मैंने अभी आप नहीं थे उधर। चलो आपके बताने से मुझे और एक लीला याद आ रही है, वो बताता हूँ। नीचे ना आप जाएंगे अभी, तो अभी नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे, उधर एक गहवर कुंड है। हम लोग सब लोग अभी गहवर बन में बैठे हैं। क्या है गहवर बन आपको याद है? मैंने बताया था ना आपको कथा में, राधा रानी ने अपने हाथ से बनाया है इसको, याद है ना कि नहीं याद है? सब भूल जाएंगे, इधर ही रहते हो तो कैसे बाद में मुंबई में याद आएगा। एनीवे आपको रिकॉर्डिंग देंगे, वो आए हैं हिमांशु, वेट कर रहे हैं, कभी हमारी कथा खत्म होगी और कभी वो प्रिंट करेंगे उसको। जाने के पहले आपको सब रिकॉर्डिंग आपके हाथ में मिलेगा, बिफोर यू गो, इसलिए दे रहे आपको ताकि आपको बम्बई जाके उसकी याद आती रहे क्या क्या सुना था, इधर ही भूल गए तो कैसे चलेगा। तो क्या कह रहा था मैं आपको, गहवर बन। तो ये गहवर बन जो है वो राधा रानी के मंदिर से शुरू होता है और आगे चिक्सोली गांव समाप्त होने तक वहां पर है, और राधा रानी ने अपने हाथ से बनाया है इसको, सब कुछ फूल वेली लता पता, यहाँ का जो व्यवस्था है खाने पीने का, यहाँ पर जो पुष्प वितान है, पुष्प मंडप है, सारी व्यवस्था राधा रानी अपने हाथ से बनाई है और कृष्ण भगवान ने उनको सहायता भी किया है। और यहाँ पर राधा रानी और कृष्ण भगवान पेड़ की और वेलियों का विवाह करते थे, देश टू गेट ट्रीज मैरिड विद क्रीपर्स, फन, अद्भुत लीला है यहाँ की सब। तो गहवर बन में नीचे कुंड है, इसका नाम है गहवर कुंड। जैसे ये चार पर्वत है जो ब्रह्मा जी के सर माने गए ना, तो जो गहवर कुंड है ब्रह्मा जी की नाभि है, इट्स लाइक नेवल अम्बिलिकस। तो वहां पर एक लीला ऐसी है कि जो मैंने बताया ना आपको, वहां पर पीली पोखर पे कि राधा रानी गुडियों का खेल खेल रही थी ना, वो इस कुंड के किनारे खेल रहे थे। यहां पर दुर्वासा मुनि आए थे और उनको वरदान प्राप्त हुआ था। तो राधा रानी अपने 64 सखियों के साथ में रोज इस गहवर कुंड में स्नान करती हैं और मोर कुटी से सब ग्वाल बाल उन पर लड्डू फेंकते हैं, उनको डिस्टर्ब करते हैं। तो ये हमारे जो कृष्ण भगवान है वो कौन है? चौर्य अग्रगण्य है वो, चौर्य अग्रमण्य शिरोमणि, मतलब चोरों में सबसे बड़े और सबसे शिरोमणि सरताज है वो। सबको रोज माखन चोरा चोरा कर तंग करते वो, रोज गोपियां कंप्लेन करती है उनके लिए। तो टाइम बचा आपको बता देंगे अच्छे अच्छे कथाएं। तो एक बार गोपियों ने सोचा कि अरे बहुत तंग करते हैं रोज, कहीं भी छुपाएं तो भी आके ढूंढ लेते हैं, इनके शरीर में इतना प्रकाश है कि अंधेरे में ऊंची जगह पर लटका कर छुपाएंगे फिर भी अपने प्रकाश से वो देख लेते हैं और फिर चुरा लेते हैं उसको। तो एक दिन हम लोग उनको सबक सिखाएंगे, क्या करेंगे, एक घर में नीचे लाकर रखेंगे मक्खन को, मतलब लटका के रखेंगे लेकिन वो लोअर लेवल पे लगाएंगे, सब दरवाजे बंद कर देंगे, एक ही दरवाजा खुला रखेंगे और हम लोग सब झाड़ियों में छुप जाएंगे। अब जब ये ठाट से आएंगे कृष्ण बलराम सखाओं को लेकर चोरी करने के लिए, जैसे ही मटका में हाथ डालेंगे हम लोग उन पर टूट पड़ेंगे, उन पर सब चार पांच गोपियां एक एक व्यक्ति को पकड़ेंगे और तय करते हैं तुमको किसको पकड़ना है, तुमको किसको पकड़ना है, ऐसा पूरा मैच बना देते हैं, ऐसा नहीं कि कंफ्यूजन नहीं किसको पकड़ना है, आपको पूरा पता है कि मुझे इसको ही पकड़ना है, मन में फिट मामला है पूरा, और एक आदमी को चार चार गोपियां पांच पांच गोपियां बना के रखते हैं क्योंकि कोई छूट ना जाए। और फिर पापा वो भी पकड़े के इतना पीटेंगे कि दोबारा मक्खन चोरी नहीं करेंगे। तो सब प्लानिंग करते हैं, जो ऊंचा ऊंचा लगाते हैं उसको नीचा कर देते हैं, लोअर लेवल में लाते हैं, सब लोग ना एक दरवाजा खुला रख के झाड़ियों में छुप जाते हैं। और निश्चित रूप से कुछ देर के बाद में कृष्ण बलराम मधुमंगल सीतामा रक्तक अंशु अभिमन्यु सब आ जाते हैं आराम से। अरे वाह, आज तो बहुत पास में लगा है सब कुछ, अच्छा भाग्य का दिन है आज, बहुत पुण्यवान दिन है आज, इतना मेरा मेहनत के चढ़े बिना मिल रहा है। लेकिन अरे देख रहे हैं गोपियों ने घंटी लगा के रखी है उसके ऊपर, गोपियों ने घंटी से कहा था, घंटी भी यहां बात करती है बाय द वे, क्या बताया था, घंटी देखो जैसे कृष्ण भगवान मक्खन खाने लगेंगे ना, क्योंकि क्या होता है ना जब भी हम कंप्लेन करते हैं यशोदा मैया से तो वो कहती है कि रंगे हाथ पकड़ के ले जाओ, इसमें हाथ में और मुंह में माखन लगा हो ना तो हम मान लेंगे कि आपके घर में माखन चोरी करते हैं। आए दिन गोपियां आके कंप्लेंट करते हैं तुम्हारा कान्हा हमारे घर में चोरी करता है, वो कान्हा बोलता है मैं कहां चोरी करता हूँ, तो किधर किधर मक्खन है कुछ है ही नहीं, मैं तो घर पे खाके जाता हूँ, इनका घर का खट्टा मक्खन कौन खाएगा, हमारे घर में इतना मीठा माखन बनाते हैं हमारी मैया, हाँ ना मैया बनाती हो ना तुम, हाँ मैं तो बहुत बढ़िया बना मक्खन बनाती हूँ, मैं खाता हूँ ना यहाँ पर पेट भर के, हाँ खाता हूँ, फिर यहाँ इनके घर में क्यों जाकर चोरी करूं मैं, नंद का लाला हूँ, नंद महाराज है हमारे, मुझे कोई जरूरत नहीं इनके घर में चोरी करने की। तो गोपियां हैरान हो जाती है, अरे कैसे बात करें इस बालक से, क्या बताएं, अभी एक ही रास्ता है कि उसको रंगे हाथ पकड़ेंगे ना, हाथ में मक्खन मुंह में मक्खन अपने घर का ही मक्खन हो तो फिर वो होता ना, वो जो हमारे गवर्नमेंट के अधिकारी होते ना वो भी होते ले, वो ब्राइब लेते ना ब्राइब, वो इतना होशियारी से लेते हैं ना कि आप उनको पकड़ नहीं सकते हो। तो वो क्या करते हैं, नोटों को पाउडर लगाते हैं, हाँ उपरा जाल बनाकर वो आदमी को नोटों को देते हैं उसके अंदर, जब वो लेता है तो उसके हाथ के निशान उस नोट पर आते हैं फिर उसको पकड़ लेते हैं। वैसे ही हमारी यशोदा मैया बोल रही है कि आप रंगे हाथ पकड़ के तो लेके आओ उसको, तो ये रंगे हाथ पकड़ने का प्लानिंग चल रहा है उनका। तो घंटी को बोल के रखा है जैसे ही आपके पास में आएगा तो घंटी को बजना नहीं है, जब ये हाथ डालेंगे उसके अंदर और हाथ डाल के मुंह में डालेंगे ना तब घंटी बजाना है, तब आपको बजना है, हम सब लोग भाग के आके पकड़ेंगे ऐसे हाथ में मक्खन मुंह में मक्खन ऐसा पकड़ेंगे उनको सबको। अरे घंटी बज रही लगा के रखे, क्या चाल है इसके अंदर, भगवान भी घंटी से बात करते हैं, देखो घंटी तुम तो मेरी सेविका हो ना, हाँ हम तो आपके सेवक है, आप तो स्वामी है हमारे, तो बजना नहीं तुम, जब मैं खाऊंगा ना मक्खन तब तो बजना नहीं, हाँ ठाकुर जी आपकी इच्छा, आपकी इच्छा हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई बात नहीं हम नहीं बजेंगे। और जैसे ही भगवान और बलराम जी और मधुमंगल सब लोग हाथ डालते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया मक्खन सो टेस्टी, जबान घुमा रहे हैं ओठ के ऊपर, कभी खाऊं ओठ मुंह में डालते हैं, जैसे ही डालते हैं घंटी बजती है, जैसे ही घंटी बजती है सब गोपियां झपकती है चार पांच एक एक पर पकड़ लेती है सबको अच्छा तरह से, अरे नहीं नहीं सखी ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, देखो मान जाओ, मत करो छोड़ दो, बोले बड़े होशियार बनते हो, हाँ मैया के पास जाके बड़ी शरारतें बताते हो हमारे लिए, हमारे को बहुत एम्बरेस करते हो, संकोच कर देते हो, अभी आप हमको नहीं छोड़ेंगे आपको हम। वैसे कई कहानी है, एक कहानी बता आपको मैं, तो प्रभावती गोपी जो है ना वो उपनंद बाबा की पत्नी है, वो कृष्ण को पकड़ती है, क्योंकि प्रभावती को बहुत डांट पड़ी है कई बार कंप्लेन करने के बाद में, तो बोला आज तुम्हारे हाथ में मक्खन منہ میں لگا ہوا مکھن ہے, اس کو پوچھنا نہیں ہے, چلو ہمارے ساتھ. کلائی کو ٹائٹ پکڑ دے ایک دم زوردار, سب سکیاں سب بال بالوں کو ٹائٹ پکڑتی ہے ایک ہاتھ سے, گھٹ ایک دم پکڑتی ہے اور پہرا دے کے ایسا اس کو لے کے چلتے, چلو نند گاؤں چلیں گے ابھی سب لوگوں کو دکھائیں گے. تو پرماوتی کو بھی چل رہی ہے, بہت خوش ہے آج ہم نے کانا کو پکڑ لیا ہے, آج یشودا کو دکھا دیں گے کہ تمہارا لالا کیسے ہے, ہاں روز چوری کرتا ہے اور بہت ہوشیار بنتا ہے, آج پکڑ کے لائیں گے اسے. تو رستے میں جو ابھی کیسا ہوتا ہے نا, جب ماکھن چوری ہوتی ہے نا تو یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں کرشن بلرام وغیرہ, اور کچھ کچھ بال بال بےچارے بھاگ نہیں سکتے نا, وہ پکڑے جاتے ہیں اور ان کو ڈانٹ پڑتی ہے, ڈنڈے پڑتے ہیں اور کرشن بھگوان بھاگ جاتے ہیں. تو وہ جو مار کھانے والے بال بالک ہیں وہ رستے میں کھڑے ہیں, بولے اچھا ہو گیا اچھا ہو گیا, ہاں ہر بار ہم کو پکڑا کے بھاگتے ہو خود, آج تم پکڑے گئے, اچھا تالیاں پیٹ رہے ہو. اور کرشن بھگوان بڑا دکھ ہو رہا ہے, ارے یہ جو ہم جو پکڑے جاتے ہیں آج ہمارا بدلا لے رہے ہیں, بڑی شرم آتی ہے. تو پربھاوتی جی کو کہتی ہیں, دیکھو وہ چاچی ہے نا, بڑی تاؤ تائی جی ہے, مطلب تاؤ کی پتنی ہے, دیکھو تائی جی بڑی شرم آ رہی ہے, سب لوگ ہنس رہے ہیں, سب گوپیاں بھی ہنس رہی ہیں, یہ کوئی اچھا نہیں ہے, دیکھو ایسا ایسا میرا سنکوچ کرنا, ایسے میرا اپمان کرنا ٹھیک نہیں ہے, آپ مجھے کم سے کم وہ اپنی چندری سے ڈھک تو لو کم سے کم, تو وہ پہچانے کے نہیں کون ہے چندری کے نیچے کون ہے, ڈھک لیں گے ایسے تو ایسا معلوم پڑے گا کون ہے, تو تھوڑا ہنسنا بند ہو جائے گا, میرا سنکوچ کم ہو جائے گا. بولے کوئی بات نہیں, اس پہ کیا بات ہے, ٹھیک ہے اس کو ڈھک لیتے ہیں. ابھی کیا سین ہے کہ پربھاوتی گوپی چل رہی ہے, اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہے اور پورا اس کو ڈھک لیا ہے چودھری سے اپنے, یہ چل رہا ہے. اس کے پہلے کرشن بھگوان بہت ہوشیار ہے, اس نے پربھاوتی کے لڑکے کو اشارہ کر رکھا ہے, بولے تو میرے ساتھ چل, میرے بازو میں چل, وہ بھی پربھاوتی کا لڑکا اس کے پیچھے چل رہا ہے. پربھاوتی کو اس نے پربھاوتی نے پکڑا ہے, جا رہے دونوں, بولتے ہیں دیکھو پربھاوتی تائی جی یہ میری کلائی ہے نا بہت کومل ہے, اتنی کومل ہے, تم نے اتنے بڑے ہاتھ سے, میرے اتنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں اور اتنا بڑا ہاتھ, اتنے بڑے ہاتھ سے اتنا ٹائٹ پکڑ کر کے آئے, بہت خون بہنا بند ہو گیا آگے آگے کا ہاتھ سن ہو رہا ہے, دکھ رہا ہے مجھے بہت, تھوڑا سا ہاتھ بدلی کر لوں نا, میں آ رہا ہوں ساتھ میں آپ کے, رائٹ ہینڈ چھوڑ کے لیفٹ ہینڈ پکڑ لوں. تو بولے کوئی بات نہیں, اس میں کیا ہے, ہاتھ تو دے رہا ہے نا پکڑنے کے لیے. جیسے وہ گوپی بہت آنند میں ہے کہ میں نے کرشن کو پکڑا ہے, اتنا خوشی ہے وہ, اتنے میں جو ہاتھ بدلتی ہے ترنت بھگوان اتنا کوئکلی اپنے دوست کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے اور پیچھے سے جھک کر ایسے نکل جاتے ہیں, سب لوگ ادھر آنند میں ہیں, سب گوپیاں اور گوال والوں کو پکڑ کے لے جا رہے ہیں. ابھی چندری کے نیچے کون ہے, پربھاوتی کا بیٹا, کرشن بھگوان پیچھے سے بھاگ کے گھر جاتے ہیں, اپنے سب سے پہلے پہنچتے ہیں اپنے گھر میں, میا بھوک لگ رہی ہے مکھن کھلاؤ, لالا آ جاؤ تھکے آئے ہو بیٹھو بیٹھو, گود میں لاتی ہے چومتی ہے دلارتی ہے, بولو چلو بڑا اچھا اچھا مکھن نکال کے کھلاتی ہے, پدم گندا مطلب جس کی کمل کی خوشبو آتی ہے اس کو, گائے کو وہ کمل کی خوشبو والا گھاس کھلاتی ہے تو دودھ جو نکلتا ہے اس کو کمل کی خوشبو آتی ہے, تو منتھن کرتی ہے دہی اس کا بھی کمل کی خوشبو آتی ہے, جو دہی سے دودھ مکھن نکلتا ہے اس کو بھی کمل کی خوشبو آتی ہے, وہ کمل بڑے پریم سے کھا رہی کھلا رہی ہے اس کو, بہت پیٹ بھر کے کھاتا ہے, میا بھر گیا نیند آ رہی ہے کچھ گانا سناؤ, تو میا لوری سناتی ہے اور کھانا جی سو جاتے ہیں آرام سے انت بھون. کچھ دیر بعد شانتی کے واتاورن میں اچانک شور سننے لگتا ہے, اے شور بچ رہا ہے سب, چلو 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 جلدی جلدی میا سے ملنا ہے. تو میا کہتی کیا شور بچ رہا ہے, کہتے پربھاوتی جی کے نیتروتو میں سب گوپیاں بال بالوں کو پکڑ کے کسی کو چودھری ڈال کے بھاگ بھاگ کے آ رہے ہیں, یشودا رانی دیدی آ جاؤ دیکھو تمہارے لالا کو پکڑ کے لایا, آج تم نے کہا تھا نا رنگے ہاتھ پکڑو, لو تمہارے لالا کو دیکھو. تو کرشن کی نیند کھل جاتی ہے, ارے کون آیا ہے کیوں شور مچ رہا ہے یہاں پر, میا کیا ہو رہا ہے, میا کے پیچھے آ کے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں, کیا ہو رہا ہے, ارے تو میرا پیچھے ہے, اچھا بہت ہوشیار بن رہی گوپیاں, آنے تو دو دیکھ رہا اس کو پکڑ کے لے کے آئے. دیکھے پربھاوتی کے بولتے لو آج تمہارے کھانا کو پکڑ کے لایا ہے, لو اس کو دیکھو, ارے خود کا لڑکا ہے ہاتھ میں اپنے, یشودا بولتے اچھا بہت ہوشیار بن رہی ہو, وہ تو کب کا گھر پہ آ کے ماکھن کھا کے سو رہا ہے, میرے پیچھے کھڑا ہے اور تم کو دیکھ کے بول رہی ہے کہ پھر بھی تمہارے ہاتھ میں ہے, آج تم بالک کو پکڑ کے لائی ہو, کل پتی کا ہاتھ پکڑ کے بولے کہ کرشن ہے یہ, ہاں اس کو قسم کہتے ہیں یہاں پر, آج پتر کو لے کے آئے کل قسم کو لے کے آؤ گے بولے کہ تمہارے کرشن کو پکڑ کے لے آئے, تھوڑی شرم تو کیا کرو, ہاں تھوڑی شرم تو کیا کرو. ابھی دانا چوس آتی ہوں، پھر چلے جاتے ہیں، ابھی کیا کر رہے ہیں، ابھی اتنا سب ڈراما کیا تھا فیل ہو گیا سب. جب جانے لگتی ہے تو رستہ میں کرشن بولتے ہیں، میں نے بتایا تھا نا، کہا تھا میں نے چھوڑ دو میرا ہاتھ، تم نہیں مانا تھا، نہیں مانتی ہوں کیا کروں میں. ایک لیلا ایسی ہوئی تھی کہ کرشن بھگوان کو واسطو میں وہ گھر پہ لے کے پکڑ کے چلی گئی تھی، باہر رستہ میں بہت ان کو منایا اس نے پربھاوتی کو کہ مت لے کے جاؤ، دیکھو دیکھو ایسا مت کرو، مجھے بہت کشٹ ہو رہا ہے، دیکھو پچھتا ہوگی بعد میں تم، دیکھو مجھے مت لے جاؤ، مجھے مت لے جاؤ، میری مان جاؤ بات، میری بات مان جاؤ. پھر بھی نہیں مانتی ہے، وہ کرشن کو پکڑ کے لے جاتی ہے، اور جب وہ چندری نکالتی ہے نا تو اس کا لڑکا دکھائی پڑتا ہے ان کو، کرشن اپنا روپانتر جو ہے روپ بدل کر اس کا لڑکا بن جاتا ہے، کبھی لڑکا کو دیتے ہاتھ میں، کبھی خود لڑکا بن جاتے ہیں، اور بعد میں پھر وہ اسی لڑکے کو لے کے گھر جاتی ہے تو وہ کرشن بن جاتے ہیں. میں نے کہا تھا نا کہ مت لے کے جاؤ مجھے بچا کے پاس. تو ایک بار ایسے ہوا تھا اسی لیلا میں، ہاں اس لیلا کے انت وبھاگ ہے، ایسے انت لیلا ہے. ایک لیلا میں جب گوپیاں پکڑتی چھپٹ کے ان کو، تو یہ کیا کرتے معلوم ہے، چھٹ کر دیکھتے کہ سب دروازے بند ہیں، اور جو دروازہ کھلا تھا وہ بھی سب گوپیاں اس سے اندر آ رہی ہیں، ہزاروں گوپیاں، تو وہاں پر بھی رستہ نہیں ہے. اوپر دیکھتے ہیں تو ارے کھڑکی کھلی ہے، تو ترنت سب لوگ ایک دوسرے کو چڑھ کے کھڑکی سے بھاگنے لگتے ہیں، فٹافٹ بھاگنے لگتے ہیں، اتنے تیزی سے بھاگتے ہیں، اور جو بھاگ رہے ہیں بول رہے ہیں باقی کو بلا رہے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. سب لوگ اتنی ہوا کی گتی سے جھٹ جھٹ چڑھ کر ترنت بھاگ جاتے وہ، اور ایک بچتا ہے اکیلا. وہ کون ہے؟ مدھو منگل، جس کا پیٹ جو ہے نا وہ کھڑکی سے بڑا ہے، تو وہ آدھا نکل جاتا ہے اوپر سے، اور سب بال بال کھینچ رہے ہیں، کرشن بول رہا ارے مدھو منگل نکلو نکلو باہر نکلو، انہیں کیا کروں پیٹ اٹکا ہے میرا، اور دو پیر نیچے لٹک رہے ہیں، گوپیاں کھینچ رہی ہیں اس کو، اوپر سے ہاتھ کھینچ رہے ہیں، وہ نیچے پیر کھینچ رہے ہیں. تو گریویٹی کا بل کہاں ہوتا ہے؟ اوپر ہوتا ہے کہ نیچے ہوتا ہے؟ تو جب گوپیاں نیچے کھینچتی ہیں تو نیچے کے لوگ جیت جاتے ہیں، اوپر والے لوگ ہار جاتے ہیں، اور اس کو نیچے کھینچ کر زمین پہ گرا دیتے ہیں. اوپر سے چلا رہا ہے کرشن بول رہا مدھو مدھو بھاگو بھاگو، مدھو میں بول رہا ہے کیسے بھاگوں، اندر پکڑ کے مجھے مار رہے ہیں سب لوگ، ڈنڈا لے کے پیٹ رہے ہیں سب لوگ. سب گوپیاں مدھو منگل کو بڑا زوردار پیٹتی ہیں، کیونکہ اتنے لوگوں کو پکڑا تھا، سب بھاگے ایک ہی بچا ہے، سب کا جو بل ہے اس پر نکلتا ہے، زور سے چلاتا ہے اے کرشنا اے شام سندر بچاؤ، یہ گوپیاں مجھے پیٹ رہی ہے پیٹ رہی ہے. تو کرشن بھگوان بڑی دیا آتی ہے، ارے ہم تو بھاگ نکلے، بےچارا براہمن کا پتر جو ہے پیٹ رہا ہے بےچارا، وہ دوڑ کے آتے واپس، وہ بڑا تماش ناٹک بناتے ہیں، ارے گوپیوں وہ شرم نہیں آ رہی ہے، ساندیپنی کا پتر ہے، براہمن پتر ہے، پتا ہے جنیو کو توڑ دے گا شاپ دے گا تو تمہارا وواہ کسی بڈھے سے ہو جائے گا، ایسے بڈھے سے ہو جائے گا جس کے ساتھ پہلی بیویاں ہیں، ایسا کچھ کچھ بول دیتے ہیں. بےچاری بھولی گوپیاں ڈر جاتی ہیں، ارے کنہیا کیا کریں، ہم نے تو مار دیا اس کو، کیا کریں، انہوں نے اسی کو پوچھو کیا کرنا چاہیے. ابھی ہمارے مدھو منگل یہ تھا، اچھا بولو سب لوگ گھر پہ جاؤ، اچھے اچھے لڈو بنا کے لاؤ، اور ہماری پوجا کرو اچھی طرح سے، ہمارا پیروں کا مساج کرو، ہاتھوں کا مساج کرو. تو پھر کچھ گوپیاں ان کے پیر کا مساج کرنے میں بیٹھ جاتی ہے، باقی سب گوپیاں گھر بھاگ جاتی ہیں شاپ کے بھائی سے. اچھا مساج کر لیتے ہیں بڑھیا سے، پلنگ پہ سوتے ہیں فرسٹ کلاس. کچھ دیر بعد گوپیاں آتی ہیں، بہت طرح طرح کے الگ پرکار کے ونجن لڈو مٹھائی سب لے کے آتی ہیں، اور گھیور کنڈ کے کنارے میں اس کو بٹھا دیتی ہے آسن پر. وہ پہلے تو ان کی آرتی اتارتے ہیں پورا، اگربتی اور دیپک اور شنکھ میں پانی اور وستر پہنا دیتی ہیں ان کو، چرنوں کی سیوا کرتی ہیں، چرن دھوتے ہیں براہمن کے، دکشنا دیتے ہیں ان کو، اور سب بٹھا کر ان کو بڑے پریم سے لڈو کھلاتے ہیں، بڑے پریم سے سنگھاسن پر بیٹھ کر مدھو منگل جی بہت لڈو کھاتے ہیں، پھر ان کو آشیرواد دیتے ہیں تمہارا وواہ جوان لوگوں سے. ایسی چٹپٹی لیلا یہاں پر ہے، وہ گیور کنڈ پہ ہوئی ہے کئی پرکار کی. ایک بار ایسی لیلا ہوئی ہے کہ مکھن چراتے سمے وہ پکڑے تھے ان کو، پکڑتے نا ابھی ہاتھ میں مکھن ہے، منہ پہ مکھن لگا ہوا ہے، سب ایک دم برابر ہے، ریڈ ہینڈ پکڑا ہوا ہے. تو کیا کہتے ہیں، دیکھو سکی ایسا ہے کہ تمہارا مکھن کتنا قیمتی ہے، ہاں تم کتنا محنت سے بناتی ہو اس کو، کتنا جماتی ہو اس کو، منتھن کرنا پڑتا ہے، پھر سنبھالنا پڑتا ہے، بڑے پریم سے بناتی ہو، کتنا بھکتی سے بناتی ہو، اتنا قیمتی مکھن ہے تمہارا. میں نے دیکھا جب میں تمہارے گھر پہ آیا، تم کو ملنے آیا تھا میں، دیکھا تمہارے مکھن کے مٹکے پر کتنی چٹیاں چل رہی ہیں، تمہارے مکھن میں چٹیاں جا کر مکھن کو خراب کر رہی ہیں. تو میں نے سوچا کہ اتنی محنت سے گوپیاں بناتی ہیں، तो मेरा ये ड्यूटी है कि मक्खन को चींटियों से बचाए। तो मैं देख रहा था कि चींटियां मक्खन के अंदर घुस रही हैं, तो मैंने फिर एक एक मक्खी को चींटी को वहां से निकालना आरंभ किया। वो गोपियों को बता रहे हैं क्या क्या हो रहा है। जब मैं एक एक चींटी को निकालने लगा तो मटके पर बहुत चींटियां थी। मेरे हाथ जब मक्खन के अंदर चींटियों को निकालने गया तो मेरे हाथ से ऊपर कुछ चींटियां आई, ऐसे 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 आई ऊपर, और यहां से मेरे गाल पर आई, तो मेरे होठों पर आई, मुझे गुनगुनी होने लगी। तो मैंने मक्खन से हाथ निकाला और हाथ से उस चींटी को निकाला। जब हाथ से चींटी को, हाथ मक्खन में था तो हाथ को मक्खन लगा था ना मेरा, तो उसी हाथ से मैंने गुदगुदी होने की वजह से चींटी को निकाल दिया तो कुछ मक्खन होठों को लग गया, तो मेरी जीभ बाहर आ गई, उसने चाट लिया उसने। क्या करे, आपका मक्खन इतना मधुर है, मैं इस मोह को टाल नहीं पाया। मैं खाने को नहीं आया था, मैं आपकी सेवा करने, लेकिन वो ऐसे लग गया, होठों तक पहुंच गया, तो फिर मैं चाट न कैसे लूं उसको। इसलिए गोपी मैं चोरी करने नहीं आया था, मैं तो आपकी सेवा करने आया था। ऐसे वाद विवाद करते हैं उनसे समझाने के लिए। जब वो हारने की पोजिशन में आते हैं ना, तभी ऐसा हम्बल नम्र आर्गुमेंट करते हैं, और जब दूर रहते हैं तो बड़े अच्छा आर्गुमेंट करते हैं, डंडा दिखाते हैं, कभी गाली देते हैं उनको, कभी बच्चों को चिमटा निकालते हैं, कभी वो पेशाब कर देते हैं, कभी कान में पानी डाल देते हैं, बच्चे को तंग करते हैं, उनके पलने से उठाकर जमीन पर रख देते हैं। इस तरह से भगवान जो है इस धाम में गोपियों को बड़ा आनंद देते हैं, और गोपियां भी कंप्लेन तो करते हैं, लेकिन कंप्लेन का तो बहाना है, कृष्ण का दर्शन करना है, इसलिए वो रोज कंप्लेन करने के लिए नंद भवन पहुंचती है। क्योंकि जब वो घर पे आता है तो उनका दर्शन होता है, देखो देखो कैसे चोरी कर रहे हैं, बहुत देर तक उसको आनंद लेते हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे चोरी कर रहे हैं, और बहुत आनंद लेने के बाद भी पकड़ने को जाते हैं। तब तक उनको खुशी होती है कि कन्हा के दर्शन हो रहे हैं, वो चला जाता है तो उनसे रहा नहीं जाता है, फिर कंप्लेन के बहाने नंद भवन चले जाते हैं। नंद भवन प्रवेश करते हैं, यशोदा दीदी सुना तुमने तुम्हारे कान्हा ने क्या हरकत किया है, यशोदा मैया यहां बैठी है और वो वहां देख रहे हैं कि कंप्लेन कर रहे हैं। ऐसा कभी होता है क्या, उसको कंप्लेन करना है, उसको मुंह पे कंप्लेन करना है, आंखों में देखकर ऐसा झांक के, तुम्हारे बच्चे ने उंगली घुमाकर ऐसे ऐसे, तुम्हारा बच्चा ऐसा है, तुमने ऐसा किया है। जब दो माताएं झगड़ती है ना बच्चों के झगड़े में, तो कैसे झगड़ती है, वो दुनिया को भूल जाते खाली एक दूसरे को देखते हैं। लेकिन ये कैसे करते हैं, कंप्लेन यशोदा को कर रहे हैं, यशोदा इस तरफ खड़ी है और वो उनका नजर वहां पर है, क्योंकि दरवाजे से वो आएगा सुनकर कंप्लेन, उसके दर्शन हो जाएंगे, इस बहाने वो कंप्लेन करने जाती है। जैसे कृष्ण भगवान को राधा रानी का दर्शन न हुआ तो बहुत व्याकुल हो जाते हैं, वैसे गोपियां उनका दर्शन न हो तो वो व्याकुल हो जाती है। ऐसा दिव्य आनंद देने के लिए कृष्ण भगवान यहां पर आते हैं। वो कहते हैं कि वैकुंठ में मेरे पास अनंत लक्ष्मियां हैं, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेवे मानो, हजारों कोटि लक्ष्मियां हैं, इतना ऐश्वर्य है वहां पर, इतना आनंद है, इतना सुख है, लेकिन वैकुंठ का ऐश्वर्य छोड़कर मैं ब्रज में गोपियों का माखन दही खाने के लिए यहां पर आया, इसलिए वो चुरा चुरा कर खाते, वो भी उनका ही है, सब उनका दिया हुआ है, ये चुराते क्यों है, वो मक्खन नहीं चुरा रहे हैं, वो गोपियों का प्रेम चुरा रहे हैं, उस प्रेम की पागल है वो प्रेम उनको मिल रहा है, इसलिए वो मक्खन के बहाने उनके घर पे आते हैं उनका प्रेम चखने के लिए। और गोपियां भी दिन भर जब मक्खन बनाती है तो सोचती है कि आज मेरे घर में आके चोरी करे तो कितना अच्छा होगा, मेरे घर में आए, ये सोचकर ही मक्खन बनाते हैं, वो उनके लिए बनाते हैं। तो रमेश बाबा जी उस दिन बता रहे थे कि जीवन कैसा होना चाहिए, इस जीवन में जो भी कार्य करते हैं वो केवल कृष्ण के लिए ही करना चाहिए, हमारी इंद्रियों से जो भी कार्य करना है वो केवल कृष्ण के आनंद के लिए करना है, और जब मन के विपरीत कुछ घटना होती है या मन के अनुकूल घटना होती है दोनों अवस्था में सम रहना चाहिए, मतलब विपरीत घटना हो गई दुखी नहीं होना चाहिए और अच्छी घटना हो गई तो बहुत कुछ भी नहीं होना चाहिए, जो भी है भगवान की इच्छा में ठीक है। और तीसरी बात है नम्र रहना चाहिए, ये तीन बातें भगवान कृष्ण अर्जुन को 18वें अध्याय में 57वें और 58वें श्लोक में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब हम सम रहेंगे हर वस्तु घटना में, हर क्षण में भगवान की ही सेवा करेंगे और सदैव नम्र बन के रहेंगे तो फिर भगवान के धाम में पहुंच जाएंगे, ये फॉर्मूला भगवान स्वयं अर्जुन को बता रहे हैं। और गोपियों का जीवन जो है इसका प्रूफ है, दिन रात उनके मन में कौन है, केवल कृष्ण है, दिन रात वो कर क्या रही है, केवल कृष्ण की सेवा कर रही है, कभी यशस्वी हो रही है पकड़ने में, कभी नहीं हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी चले गए भगवान मथुरा में तो भी वो मान लेती है कि भगवान की इच्छा है, नम्र बनी रहती है, हमेशा नम्रता से उनकी सेवा करती रहती है, कोई अहंकार नहीं उनके मन में, नम्र बनी रहती है, इसलिए वो हमेशा भगवान के धाम में ही रहती है, कुछ जाने की जरूरत नहीं, वो उधर ही रहती है हमेशा, चित्त से मन से हृदय से हमेशा भगवान के धाम में निवास करती है। तो हम भी बंबई में रहेंगे, दिल्ली में रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, हमेशा भगवान की सेवा में रहेंगे, भगवान के विचार में रहेंगे, नम्र बने रहेंगे। प्रणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। तो हम नित्य रूप से निरंतर भगवान के नाम का कीर्तन और जप कर सकते हैं, और वही गोलोक धाम का वास है। जहां पर भी आपको ऐसी अवस्था में, आप वहीं पर गोलोक धाम में हो, और जब ये शरीर खत्म हो जाएगा फिर आत्मा से हम दिव्य देह धारण करने के लिए गोलोक धाम चले जाएंगे, वहां पर भी यही जीवन कंटिन्यू होगा। तो मान बिहारी दाल से आप प्रार्थना करो कि बार बार आपको लेके आए, सेवा दें, और जहां पर भी रखें उनकी सेवा में रखें। श्री राधा मान बिहारी लाल की जय, श्री बरसाना धाम की, राधा रानी की जय, जय श्री राधे।